Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हमने सोचा था कि तुम बहुत बढ़िया बढ़िया रसपान करते होंगे, हिमालय में घूमते हो, पंख लगा के उड़ते हो, हम तो जमीन पर ठेलते रहते हैं, ठेले बोले मजा नहीं आया उतना वैसा जैसे तुम बोल रहे थे। तो भ्रमरों के बीच में एक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा रुको रुको, बात गड़बड़ क्या है। उन्होंने कहा कि उनके मुंह खोल के देखो तो क्या है। तो हुआ गड़बड़ क्या था कि सब गुबरेलों ने विचार किया था कि हम जा तो रहे हैं वहां, लेकिन वहां भूखे न मरना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने अपने मुख में गोबर भर के गए थे और वो सुरक्षित था, गोबर खाया नहीं उन्होंने, मुख में रखना भैया, भूख लगे तो खा लेंगे हम लोग। अब होता क्या था, जहां भी सुगंध मकरंद का पान करने के लिए जाए और वो सुगंध नारायण उनको अनुभव में नहीं आती थी, वही गोबर की गंध आती थी। सुगंध गई और गोबर की गंध, और उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि वहां और यहां कोई अंतर नहीं है, क्या अंतर है। तो यही तो बात बोल रहे हैं आचार्य यम, कह रहे हैं कि आप प्रज्ञान के साथ यदि अशांति लेकर के पहुंचेंगे तो वो प्रज्ञान परमात्मा को पाने में समर्थ नहीं होगा। चरित्रहीनता युक्त प्रज्ञान को लेकर के हम भगवान के पास जाए, आत्मा के पास जाए, तो हमें परमात्मा भगवान मालूम नहीं पड़ेंगे। इसलिए प्रज्ञान शुद्ध हो, हमारे भीतर का जो प्रज्ञान है वो शुद्ध हो, निर्वसन हो, शांत हो, चरित्रवान हो, तो उस प्रज्ञान के साथ आत्म तत्व को पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अशांत प्रज्ञानेन नैव आप्नुयात, अशांत प्रज्ञान के द्वारा उस तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि शांत प्रज्ञान में ही आत्म तत्व का आलोक, आत्म तत्व का प्रतिबिंब पड़ता है। अशांत प्रज्ञान में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैसे जल के अंदर चंद्रमा दिखता है, लेकिन जल शांत होना चाहिए, और जल अशांत हो तो नहीं दिखाई देता, और इसी को बोलते हैं अशांत, इसी को बोलते हैं अशांति, मन की अशांति, बुद्धि की अशांति, इंद्रियों की अशांति, और न असमाहितः, असमाहितः प्रज्ञानेन नैव आप्नुयात। सारे शब्द प्रज्ञान के साथ जोड़ना, ये विशेषण प्रज्ञान के हैं, असमाहित प्रज्ञान। पर आदमी के विचार, आदमी की वृत्तियां यदि फैली हुई हो ना बाहर, बहिर्मुखता, आदमी में बहिर्मुखता हो तो वो भी आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होता है। आदमी फैला हुआ है बाहर, आप ध्यान दें, आदमी बाहर बिखरा हुआ है, आदमी का जीवन बिखरा हुआ है। एक बार महाराज जी ने कहा कि वो एक गाना भी है ना, गाना दिल के टुकड़े हजार हुए, है ना। है वो बहुत मजेदार है, वो बहुत आध्यात्मिक रूप में आप उसको घटाओगे, बहुत बहुत अच्छा है। दिल के टुकड़े हजार हुए और कहीं कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, तो आपके पास भी दिल है कि नहीं भैया। टुकड़े तो हजार हुए और वो टुकड़े कहां गिरे, इधर उधर गिर गए, तो अब आपके पास दिल बचा कि नहीं। तो ये प्रज्ञान यदि बिखरी हुई है, हमारा ज्ञान बिखरा हुआ है, अनेकों अनात्म पदार्थों में कहीं बटा है, रूप विज्ञान में, शब्द विज्ञान में, रस विज्ञान में, स्पर्श विज्ञान में, गंध विज्ञान में, आकृतियों में, सौंदर्य में, कुरूपताओं में, राग द्वेष आदि मनोभावनाओं में हमारी प्रज्ञान बिखरी हुई है। तो ऐसी बिखरी हुई परिचिन्न अनात्मा को विषय करने वाली प्रज्ञान उसके द्वारा आत्म तत्व को कैसे जानेंगे। भगवान ने कहा ना व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। भगवान ने कहा अव्यवसायी नाम बुद्धि ये बहुशाखा ऐसे बोलता वो जो बुद्धि है ना संसार को विषय करने वाले ये बहुशाखा उसकी शाखाएं बहुत हैं ये रूप गंध स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करने वाले बहुशाखा। लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि जो बहुशाखा अनंत वासना वाली जो बुद्धि है अव्यवसायी है। ये अव्यवसाय माने परमात्मा की तरफ का व्यवसाय नहीं है वो, ये जो व्यवसाय है वो अनात्मा की तरफ का है वो परमात्मा की तरफ का प्रयत्न नहीं है व्यवसाय। लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है पूर्णन जो व्यवसायी बुद्धि है ना परमात्मा को विषय करने वाले वो एक है एक एक समाहित तैल धारावत ऐसा बोलते कि नहीं आप वो तेल धारावत वो आजकल का नारियल का तेल नहीं है बूंद बूंद टपकता है। आज जो नारियल का तेल टपका तो बूंद बूंद टपकता है दूसरे बूंद का पहले बूंद से कोई संबंध ही नहीं होता है। लेकिन आप वो एरंडी का तेल होता है ना एरंडी का तेल ऐसे टपको धारा बनेगा ऐसे तेल धारा उसको बोलते अखंड धारा। और हमारी जो बुद्धि है ना वो बूंद बूंद टपकती है नारियल के आजकल के नारियल के तेल की तरह बूंद बूंद वहां तेल धारा नहीं है वहां वो बूंद है। बूंद और धारा में अंतर है बूंद में वहां परिच्छेद है परिच्छेद एक 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 और धारा अखंड तेल धारा। वैसे हमारी जो बुद्धि है ना अखंड हो यदि ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए तेल धारा वत अखंड जो प्रज्ञान और हमें तो प्रज्ञान को ही तो अखंड बनाना है और क्या करना है। प्रज्ञान में परिच्छिन्नता न हो आप श्रवण में बैठ गए और श्रवण ही करते रहे आनंद आया आहा और वो बूंद बूंद टपकने वाला आज यदि श्रवण करेंगे तो आप बैठे हैं सत्संग में गया मन कहीं और दुनिया में बन गए अब बूंद अब आप धारा नहीं बने अब आप तेल बन गए बूंद वाला तेल। इसलिए नासमाहितः असमाहितः प्रज्ञानेन नैव अप्नुयात जो प्रज्ञान समाहित नहीं है तैल धारावत अखंड नहीं है जो परिछिन्न प्रज्ञान है ज्ञान उसके द्वारा उस तत्व को जानना संभव नहीं है। ये श्लोक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है सोचने जैसे श्लोक हैं दोनों भी। और अशांत मानसो हमारी प्रज्ञा असमाहित है तो हमारा मन भी असमाहित है नाशांत मानसो प्रज्ञानेन नैव अप्नुयात अशांत मन जो हमारे संकल्प विकल्पात्मक जो मन है मन शक्ति है वो शांत नहीं है तो भी आत्म तत्व को पाना संभव नहीं। मनसा एव इदम आप्तव्यम मन की द्वारा ही इसको जाना जाता है। लेकिन कौन से मन से जो शांत मन है जो शांत मन है माने हमारा मन भौतिक पदार्थों के संकल्पों में नहीं जीता है ऐसा और संकल्प भी हो तो वो संकल्प माने एक मनन का रूप हो संकल्प भी है तो मनन का रूप आप बैठ करके बहुत सी कल्पनाएं कर रहे हैं लेकिन कौन सी कल्पनाएं कभी कभी साधक भी कल्पनाएं करता है क्या कल्पनाएं करता है ओहो मेरे को आत्मज्ञान हो गया समाधि लग गई ऐसा आदमी कल्पनाएं करता है मेरे को ब्रह्मज्ञान हो गया ये भी कल्पना करता है आदमी बैठ कर क्या अच्छी कल्पना है। आप कल्पना करने में हिमालय की किसी गिरी कंदरा में बैठकर ध्यान कर रहा हूं और मेरे को बुद्धत्व हो गया मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया आप ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप साधना की कल्पनाएं कर रहे हैं तपस्या की कल्पनाएं कर रहे हैं इंद्रिय संयम की कल्पनाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी कल्पनाओं की उड़ान केवल वासना मूलक है तो तो ऐसे मन के द्वारा हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहते हैं अशांत मानसो न, अशांत मन के द्वारा हम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अशांत मन फलार्थी, फलार्थित्वात, फलार्थित्वात का अर्थ होता है कि आदमी फल को पाना चाहता है, फल फल है ना, फल को पाना चाहता है। फल माने यहां वो फल नहीं बाजार वाला, फ्रूट के अर्थ में फल नहीं है, फल माने प्रयोजन, हमको क्या मिला ऐसा सोचता है। कई बार आध्यात्मिक साधक का मन भी सोच के व्यथित हो उठता है, कई बार आध्यात्मिक साधक भी सोचता है कितने दिनों से हम साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना का फल जो आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन, ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। और कोई गृहस्थाश्रम का आदमी या अन्य जो साधक नहीं है या अर्थ साधक है, वो व्यक्ति भी सोचता है कि हमने इतना कुछ किया लेकिन अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, या संसार की कोई चीज नहीं मिली, और वो संसार की चीज नहीं मिली ये सोच के भी अशांत हो जाता है। फलार्थी प्रयोजन को पाने वाला जो व्यक्ति है दुनिया के बारे में सोच के दुखी हो जाता है, अशांत मन वाला। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जो फलार्थी है ना, वो भी फलकामी होने के नाते उस तत्व को नहीं जान पाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वही आदमी जो शांत है, जिसका मन शांत है, समाहित है, और वासना मूलक चरित्रहीनता का जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, ऐसी जो प्रज्ञा, उस प्रज्ञा के द्वारा आचार्यवान प्रज्ञावान पुरुषो वेद, ऐसा प्रज्ञावान पुरुषो वेद, जो प्रज्ञावान है वो जानता है, उस तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन उस प्रज्ञान के साथ आचार्यवान शब्द भी जोड़ देना, आचार्यवान माने शास्त्र मूलक, जिसके साथ शास्त्र है, जिसके साथ गुरु हैं। आचार्यवान का अर्थ होता है जिसके सानिध्य, जो गुरु के सानिध्य में है, संत के सानिध्य में, मार्गदर्शक के अंदर वो साधना कर रहा है, वो व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। मन की चंचलता दूर हो जाए, ध्यान के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, और निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान कर जिसका चित्त निर्वसन हो गया। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इस पूरे श्लोक का रहस्य, तात्पर्य, सार यही है। जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा हमारे मन की विक्षेप अवस्था दूर हो गई। जैसे आप यहां बैठे हैं ना, आप निरंतर सत्संग में आते रहना, शांत बैठने की आदत रखना, आप कहीं भी बैठेंगे तो शांत बैठेंगे। और जब कोई नया आदमी आता है ना सत्संग में, मैंने देखा है जो नया कोई आदमी आ जाए सत्संग में, तो बैठते ही मालूम पड़ता है कि नया आदमी है। तो कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, वो हिलते रहेगा या इधर उधर देखता रहेगा, सब लोगों को देखता रहेगा कि लोग कुछ भी देखता रहे, कुछ भी नहीं देखेगा तो फोटो भी देखता रहेगा, कुछ भी देखता रहेगा। और उस समय मालूम पड़ता है कि इसकी जो भीतर की जो प्रज्ञा है अभी स्थिर नहीं है। और आप लोग जब बैठते हो ना तो बैठे रहते हो ऐसे स्टेच्यू की तरह। आप घर में शायद इतना शांत नहीं बैठते होंगे, लेकिन यहां आने के बाद ये अभ्यासजन्य है, ये एकाग्रता, ये मन की स्थिरता अभ्यासजन्य है। इसलिए आपको अपने मन को स्थिर करना हो ना, तो ऐसे ही आप बैठो, ध्यान लगाओ, बैठो पांच मिनट, ज्यादा नहीं, हिलना मत, पांच मिनट ज्यादा नहीं, पांच मिनट मन को बोलने का हिलना मत, और शरीर को भी बोलने का हिलना मत, और ये देखना कि आपकी बात मानता है कि नहीं। वो बच्चे कोई खेल करते हैं आजकल, खेल वो स्टेच्यू वाला कोई खेल करते हैं, जैसे इशारा किया तो जैसे वैसे आप चुप खड़े हो जाओ, और आप हिल गए तो आउट हो आपका आउट होना है तो आप अपने मन को बोलो भैया शांत, और आपका मन मान गया तो आप जीत गए। आपके मन ने माना, आप अपने शरीर को बोलो शांत। तो एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, गीता प्रेस के हनुमान दास पोद्दार जी महाराज, पोद्दार जी गीता वाटिका में बैठ गए। बहुत पहले तो बहुत लोगों को मिलना जुलना लिखना लेख लिखते थे, बैठ गए। किसी साधु ने पूछा कि महाराज आप यहां गुफा में बैठ के कुटिया में बैठ के क्या करते हो? बोले कुछ भी नहीं करता हूं। बोले ये कैसे संभव? अरे बोले कुछ नहीं, हमने मन को बोला भैया तुमने बहुत कुछ किया, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करो तुम, चुप। बोले चुप हो गया। बोले मन चुप हो गया। तो ऐसे आप अपने मन को बोलो ओ चुप, कुछ सोचना ही मत, कुछ करना मत, आप भजन भी मत करो, आप जब भी मत करो, केवल साक्षी। आप थोड़ी दिनों में आप अभ्यास तो करो, आप 6 महीने, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, 6 दिन नहीं, लोग तो 1 घंटे में आत्मज्ञान करा देते हैं आजकल कुछ संप्रदाय, 1 घंटे में आत्मज्ञान। 6 महीने तक आप करो, केवल 5 मिनट 10 मिनट टाइम देना मन को शांत। तन मन में कोई क्रिया नहीं होना चाहिए, क्रिया का आधार न मन बने न तन बने। 6 महीने के बाद देखना आपको ऐसा लगेगा अरे मन शांत हो गया हमारा, आपको एक क्षण ऐसा अनुभव होगा अरे इतना स्थिर मन है, ओहो यही मन की स्थिरता। और निष्काम कर्म करना हमेशा, चाहने वाला इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, ऐसा सोच के कर्म नहीं करना है, कर्म करते चलो। फल के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, रिजल्ट की हाँ एक बार तय कर लो ना, एक बार तय कर लो कि हमको हरिद्वार जाना है, हो गया ना बात खत्म। क्या बार बार ये सोचते जाओगे? एक बार रिजल्ट तय हो गया बात खत्म, अब कर्म पर ध्यान दें। निष्काम कर्म के द्वारा मन शुद्ध हो गया, ऐसी शुद्ध और निश्चल प्रज्ञा के द्वारा ही परमात्मा को पाया जाता है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। अब अंतिम श्लोक है इस वल्ली का, दूसरे वल्ली का अंतिम श्लोक है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च। बड़ी मजेदार बात बोली आचार्य हमने। अरे बोले वो आत्म तत्व को सामान्य समझते हो? वो ब्राह्मण और क्षत्रिय को यूं खा जाता है, बोले यूं खा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान शंकराचार्य लिखा है ब्रह्म क्षत्र रक्षणे नहीं रक्षित तो सात वैदिको धर्म है। समाज की 2 धुरियां हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनकी रक्षा होने से संपूर्ण मानव समाज की रक्षा हो जाती है। रक्षा तो चारों समाज की करना है, लेकिन मूल जो है शास्त्र और शस्त्र सुरक्षित हो तो आप अपने समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। यदि आपका शास्त्र कमजोर है, शिक्षा कमजोर है, और आपका जो है सैनिक बल, सेना बल, शस्त्र कमजोर है, तो आप न अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, न अपनी और न राष्ट्र की। इसलिए यहां ब्रह्म और क्षत्र का अर्थ केवल वर्ण की रक्षा का अर्थ मत लीजिएगा, करना तो चारों वर्ण की सुरक्षा है, लेकिन बोले शास्त्र और शस्त्र सुरक्षित हो। ब्राह्मण माने शास्त्र और क्षत्र माने शस्त्र। बोले इतना समर्थ शास्त्र और शस्त्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अरे बोले आत्मा दोनों को खा जाती। और भैया भोजन कर लेती, भोजन भात बताए यहां, भात ओदनम माने भात बताए। ये चावल आजकल डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन ये चावल जो है ना सचमुच देवताओं का भोजन है, और ये बड़ा पुराना है चावल, और खाने में भी आनंद आता है चावल। परम पूज्य महाराज श्री को लंबा लंबा चावल बहुत पसंद था, है ना? वो क्या कौन सा चावल बोलते हैं सर? हाँ बासमती। और चावल खाते तो ऐसे खाओगे, उसके साथ कोई सब्जी है दाल है कुछ तो हो तब खाएंगे। तो आत्मा ब्राह्मण और क्षत्रिय को भात बना के खा जाता है। तो भाई भात बना के खाता है तो कोई सब्जी उब्जी? हाँ हाँ, बोले मृत्यु की सब्जी है। मृत्यु रूपी सब्जी के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय रूपी भात को आत्मा खा जाता है। माने वो ब्राह्मण क्षत्रिय और मृत्यु को भी, जिसको आप बहुत महत्वपूर्ण बनाते हो ना, वो तो दाल भात बना देता है। समझ गए? ऐसा जो आत्म तत्व, उसको कौन जानेगा? कौन जानेगा? इतना महत्वपूर्ण आत्म तत्व जो ब्राह्मण क्षत्रिय और मृत्यु को भी दाल भात बना के खा जाता है। ऐसा बात भी सही है। हा? क्या दाल गलती है? मृत्यु की दाल गलती है क्या आत्मा के सामने? मतलब यही है। अरे भाई, हमारे सामने तुम्हारी दाल गलेगी क्या? ये मृत्यु जो है वो बहुत लोगों को तकलीफ देता है। सब लोग डरे हुए हैं। किससे? मृत्यु से। हाय हाय हाय, आदमी ही सोचता है कि हम ना मरे, और मरे तो भी पहले से सब कुछ तैयारी करके मरे तो अच्छा है। आदमी सोचता है अचानक मर गए तो हमारा क्या होगा। ये सारी जो चिंताएं हैं ना, ये बाकी के लोगों की हैं, लेकिन यही मृत्यु जो आत्मा के सामने जाती है तो अकाल अकाल, सत श्री अकाल वाहेगुरु बोलते कि नहीं? आप बोलते कि सत श्री अकाल जी, ऐसा बोलते हैं। वो जो परमात्मा है ना, वो सत है, श्री ऐश्वर्य युक्त है, और वो अकाल है। काल की वहां दाल नहीं गलती। स पूर्वेशमपि गुरु काले नानव छेदात। पतंजलि ने कहा कि अरे भैया, वो महाकाल है, वहां अनवच्छेद का अर्थ है, वहां काल उसको टुकड़ा नहीं करता है, काल उसको मारता नहीं है। इसलिए आत्मा अविनाशिवा, अरे अयम आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, अविनाशी तु तद विद्धि, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। ये श्रुतियां कहती कि आत्म तत्व जो है वो अविनाशी है, इसलिए मृत्यु सबको मार दे, लेकिन आत्मा के सामने जाने के बाद, अरे वो मृत्यु को भी खा जाती है आत्मा। ऐसा बोले, आप जीवन मुक्त बनना चाहते, मृत्यु से परे होना चाहते हैं आप, तो आप आत्मा बन जाओ। आप मरना नहीं चाहते हैं तो आप क्या बनो? आत्मा बनो। इतनी श्रेष्ठ आत्मा कि जहां मृत्यु का कोई संस्पर्श नहीं, जो मृत्यु को ही खा जाती है। जो आत्मज्ञान होने के बाद आदमी अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, और उसके बाद फिर उसके अंदर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भेदभाव नहीं रहते हैं। वहां वर्ण व्यवस्था, वहां जाति व्यवस्था, प्रांत व्यवस्था, ये सारे जो परिच्छिन्न व्यवहार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। वहां शरीर धर्मों को लेकर आप जीते नहीं, आत्म तत्व क्या करता है? आपके सारे शरीर धर्मों को खा जाता है। इसलिए आप सुनते हो ना, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आप घोषणा करते हैं कि न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी। ये आत्मबोध जो है ना, ये यही तो है दाल भात बनाना, और क्या है? आत्मज्ञान होने के बाद वो दाल भात बना के खा जाता है, तो आप सचमुच किचन में मत पहुंचना। ज्ञान होने के बाद वहां मृत्यु भी नहीं है, ज्ञान होने के बाद वहां ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि का अभिमान भी नहीं है, सारे अभिमान विसर्जित हो जाते हैं। ऐसा आत्म तत्व जो वर्ण जाति मृत्यु से भी परे, जिसको जानने के बाद नारायण अज्ञान सहकृत संपूर्ण संसार समाप्त हो जाता है, उस आत्म तत्व को कौन जानेगा? मृत्यु यस्य उपसेचनम, बहुत लाक्षणिक बात बोली इन्होंने, लाक्षणिक बहुत मजेदार बात बोली। ऐसा जो आत्म तत्व जो मृत्यु का भी भोजन कर लेता है, क इत्था वेद यत्र सह, उस आत्म तत्व को बिना अधिकारी पुरुष अज्ञानी व्यक्ति कौन जानेगा? इसलिए कहते हैं कि उस तत्व को जानने के लिए अधिकारी संपदा का होना बहुत जरूरी है। बड़ा सुंदर वर्णन किया यहां। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिन पूरे हुए और आपकी कठोपनिषद की पहले अध्याय की दूसरी वल्ली भी यहीं पर पूरी हो जाती है। भगवत पूज्यपाद आचार्य शंकर को नमन करते हुए, संपूर्ण आचार्यों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब हम अगले बार आएंगे तो तृतीय वल्ली शुरू करेंगे हम लोग। आप सीधे बैठ जाएं। फिर एक बार सबको धन्यवाद। ओम ह्रीम नमः शिवाय। 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 ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत चरणों में वंदन। पूज्य महाराज जी ने कई सुंदर बातें हमारे बीच में रखी। बीज को अगर पौधा बनना है, वृक्ष बनना है, बड़े से बड़ा वृक्ष बनना है, तो उसे गीला करने की जरूरत है। और प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन में हम लोग बैठकर सत्संग से यही हिस्से गीले होते हैं कि हम लोग भी कुछ कर सके, हमारे में भी कुछ ऐसा परिवर्तन आए। संकल्प में महाराज जी ने बताया कि कल्प आता है और वही कल्प हम लोग देखते हैं कि प्रेमपुरी में तो कल्प वृक्ष हमेशा हम बोलते हैं और यहां दृष्टिमान भी होता है कि किस तरह से कल्प वृक्ष फलित हो रहा है और आगे भी सालों साल उसमें नए फूल लगते रहेंगे, नई नई बातें यहां बीच में आती रहेंगी, संत लोग आते रहेंगे। मगर जो ईश्वर ने हमारा शरीर निर्माण किया है उसमें जो आत्मा की खिचड़ी की बात बताई अभी महाराज जी ने कि भाई किस तरह से मृत्यु को भी खा जाता है, तो उस दिशा में एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। तो क्यों ऐसा संकल्प न ले कि जिसमें जैसे प्रेमपुरी का वृक्ष एक सुंदर वृक्ष बन रहा है, राष्ट्र एक सुंदर राष्ट्र बनने जा रहा है, विश्व एक सुंदर विश्व बनने जा रहा है, सृष्टि एक नवा निर्माण हमेशा कर रही है, प्रकृति अपनी सुंदरता हर हिस्से निखार रही है, तो जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी वर्तन है, जो हमारे विचार है, उसको कभी मौन धारण करके हम देखें कि हम जो सत्संग प्रवचन ऐसी दिव्य वाणी हमारे बीच में पूज्य महाराज जी रखते हैं, तो उसमें कहां तक हम उत्तीर्ण हुए। जो यह प्रश्न अगर हमें कोई थोड़ा भी जवाब उसका मिल गया तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने कुछ उन्नति की ओर हम आगे बढ़े हैं। पूज्य महाराज जी बराबर सालों साल से आ रहे हैं, विशेष करके भागवत के बाद ऐसा उनके साथ मन जुड़ गया कि साल में कम से कम 3-4-5 दफे हम लोग प्रेम से बात भी करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ईश्वर की दया से प्रेमपुरी आश्रम ने वेबसाइट भी बनाई है, सीडी भी अवेलेबल है, तो जो भी ग्रहण हमने 15 दिवस तक किया वो पूरे साल तक भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जाए, इतनी बातें उन्होंने महाराज जी ने बताई है। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा सोचे कि हम उसको जीवन में कहां कहां कैसे उतार सकते हैं, तो शायद हम जीवन बहुत ही सुंदर इससे आगे बढ़ा सकेंगे। महाराज जी ने बड़ी प्यारी किताब भी दी, उनका जो शीर्षक भी बड़ा प्यारा है, शीर्षक यह है एक प्रेम प्रभु का द्वार। तो पूज्य महाराज जी की लिखित यह सुंदर पुस्तक है और उस प्रभु के द्वार पर जब हमें पहुंचना है तो वह प्रेम हमारे आत्मा में प्रवेश करे और ऐसी संतवाणी हमारे को विशेष रूप से हमेशा अनुग्रहित करे। वैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूज्य महाराज जी अगले वर्ष इसी समय पधारेंगे और यही कठोपनिषद की आगे की जो सुंदर कथा है वह हमारे सामने प्रस्तुत होगी। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।